एक बात मुझे सब जगह खटकी है, इसी देश में नहीं दूसरे देशों में भी, और वो ये है कि लड़की अब तक डरती है और स्त्री अब तक डरती है। वो शेर का भी मुकाबला कर सकती है लेकिन लड़के का मुकाबला नहीं कर सकती। लड़कियों की शिक्षण की और उनके जीवन की आखिरी समस्या समझता हूँ, और इसका उत्तर कोई पुरुष दे सकेगा ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। इसलिए लड़कियों से कुछ कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है। मेरे भी लड़कियाँ हैं, पोतियाँ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो सब डरती हैं, और जितनी ज़्यादा पढ़ती हैं उतनी ज़्यादा डरती हैं। यह स्वाभाविक भी है। संभालने की चीज़ जितनी ज़्यादा कीमती होती है उतनी उसको बचा बचा कर रखना पड़ता है। जंगल की स्त्री कम संभालनी पड़ती है क्योंकि कम कीमती है। पढ़ी लिखी स्त्री, धनवान पुरुष की स्त्री, इन सबको ज्यादा संभालना पड़ता है क्योंकि कीमती है। नतीजा यह है कि लड़की मनुष्य नहीं है, वस्तु है। अब उसे मनुष्य कैसे बनाया जाए यह सीखना है, और यह अब तक किसी संस्था ने किया नहीं है। मेरी माँ की वक्त की संस्था ने नहीं, बेटी की वक्त की संस्था के में नहीं, और पोती के वक्त की भी संस्था में नहीं हुआ। ये कैसे हो तुम सोचो। मैं तो सोच नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे डर नहीं है लड़कियों से या स्त्रियों से। तुमको डर है लड़कों से। मेरे घर की जो लड़कियां एनसीसी में जाती हैं वो भी लड़कों से डरती हैं, एनसीसी के लड़कों से। जो पुलिस में गई हैं लड़कियां वो भी पुरुष पुलिस से डरती हैं, और जो फौज में जाती हैं वो पुरुष सिपाही से डरती हैं। इंदिरा जी अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, तो वो अकेली साइकिल पर अगर नदिया में घूमने लगे तो डरेगी। अब ये जो समस्या है इसका हल क्या, इसका जवाब क्या है? जवाब मैं सुझा सकता हूं लेकिन दे नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी समस्या नहीं, मेरा सवाल नहीं। सुंदरवन में एक दफा सारे जंगली जानवरों की एक बड़ी सभा हुई। अब जंगल में तो कोई सभापति चुना नहीं जाता, सिंह था वो सभापति बन गया। मुख्य वक्ता कौन हो, तो हाथी मुख्य वक्ता हुआ, क्योंकि डील डॉल में सबसे बड़ा। प्रश्न क्या था विषय विचार का, ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया होगा? अब सारे जानवर मिलकर ये सोच रहे थे कि मनुष्य को क्यों बनाया होगा। हाथी खड़ा हुआ, उसने कहा सभापति जी, सिंह से कह रहा है कि आपको तो बनाया मैं समझ सकता हूं, कैसे पैने नाखून हैं, कैसे आपके तेज दांत हैं, तो आप तो रहने लायक हैं दुनिया में। मैं भी रहने लायक हूं कि मुझे इतना डील डॉल दिया है, लेकिन ये मनुष्य के पास तो कुछ भी नहीं है, इसको क्यों बनाया? अब एक के बाद एक एक वक्ता आया, घोड़ा आया, वो कहने लगा मैं दौड़ सकता हूं, तेज पैर है मेरे पास, ये भी इसके पास नहीं है। गो माता का अशराफ पुत्र बैल आया, ने कहा कि मेरे पास सींग है, इसके पास तो सींग भी नहीं है। आखिर जिसके शिकार सब करते हैं वो हिरन आया, और उसने कहा कि मुझे भी तो मैं छलांग मार सकता हूँ, ये तो छलांग मारने का अभ्यास करता है तब छलांग मारता है। तो अंत में प्रस्ताव आया कि हम सब जानवरों को मिलकर मनुष्य के उद्धार की कोई पंचवार्षिक योजना बनानी चाहिए। ये प्रस्ताव आया, तब वो फॉक्स को क्या कहते हैं गुजराती, सियार, हिंदी में सियार कहते हैं, वो चालाक होता है सारे जानवरों में, मिस्टर रेनियर द फॉक्स, वो खड़ा हुआ। सभापति महोदय, मुझे सवाल पूछना है। का जरूर पूछ सकते हो, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इट एंड दिस हाउस एडमिट्स इट। संविधान में इजाजत है सवाल पूछने की, और यह सवाल मैं दाखिल कर रहा हूं। किससे पूछना है? आपसे और हाथी महोदय से। क्या सवाल पूछना है? आपसे यह सवाल पूछना है कि मनुष्य की सर्कस में आप नाचते हैं कि कभी मनुष्य भी आपके सर्कस में आता है? यह सवाल आपसे पूछना है। आप इतने तगड़े हैं, नाखून हैं, दांत हैं, लेकिन हमने कभी यह नहीं देखा कि आपकी सर्कस हो और उसमें मनुष्य नाच रहा हो। मनुष्य की सर्कस में आप नाचते हैं, और हाथी महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपकी पीठ पर मनुष्य सवार होता है कि कभी आप भी मनुष्य की पीठ पर सवार होते हैं? तो सभापति ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर सार्वजनिक हित की दृष्टि से नहीं दिया जा सकता, और वो सवाल खारिज हो गया। लेकिन जो पूछा गया उसमें संकेत था, मनुष्य की शक्ति उसके शरीर में या उसके शस्त्र में, उसके हथियार में नहीं है, और कहीं है। यह संकेत है। और लड़कियों के और स्त्रियों के लिए इसमें बड़ा आश्वासन है। मनुष्यों का नेता गामा पहलवान नहीं होता, किंग कॉन्ग नहीं होता। मनुष्य का नेता दुबला पतला गांधी, लंगड़ा लूला रूजवेल्ट, 90 साल का चर्चिल, या न शरीर से कमजोर मनुष्यों का नेता हो सकता है, पशुओं का नेता शरीर से कमजोर नहीं हो सकता। स्त्री और लड़की अगर लड़के से और पुरुष से कमजोर है तो उसको दूसरी शक्ति बढ़ानी चाहिए, हृदय की और मन की शक्ति। हृदय और मन का विकास निर्भयता में है। ये अगर स्त्री और लड़कियां नहीं सीखेंगी तो प्रधानमंत्री बनने पर भी वस्तु ही रहेगी, मनुष्य नहीं बनेगी। स्त्री को मनुष्य बनाना है, अगले शिक्षण का यह संकल्प होना चाहिए। तो एक चीज बहुत थोड़ी कहूंगा क्योंकि मैं ज्यादा कह नहीं सक रहा हूं। दूसरी चीज आस्तिकता। आस्तिकता अपने पर विश्वास न हो तो ईश्वर पर करो, लेकिन एक ईश्वर से मतलब है ईश्वर एक, चाहे जिस रूप में उसको पूजो भजो लेकिन एक है, इतना मानो सबका ईश्वर एक। एक शहर में एक वकील और एक धोबी एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। पड़ोस तो समझती हैं ना। तो इस धोबी के पास एक गधा था और रात को रहता करता था, तो इस वकील की नींद हराम हो जाती थी, उसको नींद नहीं आती थी इसके रेंकने के मारे। तो उसने समझाया धोबी को बुलाकर कि भाई तू अपने गधे का रेंकना बंद कर तो हमें नींद आएगी। धोबी ने कहा कि आप वकील साहब हैं, इतने अक्लमंद हैं, होशियार हैं, आप जानते हैं गधा गधा है, समझाने से क्या मानेगा, इतनी भी आपको बात नहीं मालूम। तो वकील नाराज हो गया, तो अब क्या करें। तो अदालत में गया और उस पर नालिश कर दी फिर याद कि ये धोबी मेरे पड़ोस में रहता है, इसका गधा रात में रेंकता है, मुझे रात भर नींद नहीं आती। धोबी ने भी एक वकील कर लिया। अब धोबी का वकील इससे सवाल पूछता है, वो इस दूसरे वकील से, फरियादी वकील से, कि ये धोबी का गधा रात में कितनी बार रेंकता है। ये कहा रेंकता हो कोई 5 बार। हर वक्त कितनी देर तक रेंकता रहता है। ये कहा 2 मिनट रेंकता होगा एक दफा में। तो सारी रात में ये गधा 10 मिनट रेंकता है और आप कहते हैं सारी रात नींद नहीं आती, मेरी समझ में ही नहीं आता। तो वकील ने कहा कि अब ये गधा रहकेगा, अब ये गधा रहकेगा, इस प्रतीक्षा में मेरी सारी रात बीत जाती है, मैं इसकी राह देखता रहता हूं कि ये गधा रहकेगा रहकेगा रहकेगा। तब निराश हो गया, मुकदमा खारिज हो गया। तो फिर ईश्वर के पास गया क्योंकि ईश्वर के सिवा कोई राह नहीं, और कहा कि हे प्रभु, इस धोबी का गधा अगर मर जाए तो सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। तो कुछ दिन के बाद वकील साहब के तांगे का घोड़ा मर गया। तो फिर पहुंचे कि सत्यनारायण प्रभु हम तो समझते थे कि आपको सब कुछ मालूम है, बड़े ज्ञाता है, लेकिन आपको तो गधे और घोड़े का फर्क भी नहीं मालूम। मैंने कहा था धोबी का गधा मार दो, तुमने मेरा घोड़ा मार दिया। गधे और घोड़े का भी फर्क जिसको नहीं मालूम है वो किस काम का प्रभु है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर को हमने अपना एजेंट माना है। हमारी इच्छा के अनुसार जो करता है वो ईश्वर है। पाकिस्तान की हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, वहाँ की मस्जिदों में कहते होंगे पाकिस्तान जीतना चाहिए, यहाँ के मंदिरों में कहते होंगे हिंदुस्तान जीतना चाहिए। अब बेचारा ईश्वर क्या करे? चोर प्रार्थना करता है कि भगवान चोरी पकड़ी न जाए, जिसकी चोरी हुई है वो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान चोर पकड़ा जाए। अब वो भगवान क्या करे बीच में? तो ये आस्तिकता नहीं है, इसका नाम ईश्वर निष्ठा नहीं। प्रार्थना सामुदायिक होती है, सामुदायिक से मतलब एक दूसरे के विरोध में नहीं, सबके मिलकर सुख के लिए। भारत पाकिस्तान, एक लड़की दूसरी लड़की, हिंदू मुसलमान दक्षिण उत्तर, इन सब के कल्याण के लिए मिलकर जो प्रार्थना होती है उसका नाम सामुदायिक प्रार्थना। ये ईश्वर निष्ठा है। तो ये दो चीजें अगर तुम में आएगी तो स्त्री का चारित्र्य उज्जवल होगा, वो उसमें मनुष्यता आएगी। पहली तो निर्भयता। भय तुमको मालूम है ना, वो फोटोग्राफर डार्क रूम में सारे नेगेटिव डेवलप करता है। भय वो वस्तु है जिसमें सारे नेगेटिव, जितने दुनिया के दुर्गुण हैं वो सारे के सारे भय के कारण पनपते हैं। भय जड़ है सारे दुर्गुणों की। तो कैसे भय जाए, इसकी मैंने एक बात आपसे कही सारी लड़कियों से, कि जो लड़की अपनी जान देने को तैयार है उसको किसी लड़के से डरने का कारण नहीं है। आखिर कोई क्या कर सकता है? गांधी इतनी बड़ी फौज के खिलाफ खड़ा हो गया अंग्रेजों की, क्या था उसके पास? जो लाठी थी वो भी सहारे के लिए थी, लेकिन एक सारा साम्राज्य डावाडोल हो गया, डगमगा गया। निर्भयता थी। यह स्त्री में और लड़कियों में आनी चाहिए। दूसरी चीज ईश्वर निष्ठा। हिंदू का हिंदू मुसलमान ईसाई सिख, इनके ईश्वर एक अलग अलग नहीं है। मंदिर अलग अलग है लेकिन ईश्वर अलग अलग नहीं है। इसलिए सामुदायिक प्रार्थना का अर्थ है सबके हित की प्रार्थना, एक का हित और दूसरे का अनहित नहीं। जनता पार्टी जीते और कांग्रेस हारे, और कांग्रेस जीते और जनता पार्टी हारे, ये नहीं प्रार्थना। प्रार्थना अगर कांग्रेस के हारने में हित है कांग्रेस का, तो कांग्रेस हारे। इस तरह से जिसका जिसमें हित है वो हो, ये प्रार्थना होनी चाहिए। ईश्वर निष्ठा आस्तिकता। तो लड़कियों, दो चीजें मैंने आज तुमसे कही हैं, निर्भयता और आस्तिकता। ये सारे चारित्र्य की जड़ है, बुनियाद है। मैं यहाँ आया हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ। बूढ़े आदमी का एक अधिकार बहुत बड़ा होता है, आशीर्वाद का, क्योंकि उसके पास और कुछ होता नहीं देने का, तो वो आशीर्वाद देता है। तुमको मैं आशीर्वाद दे देना चाहता हूँ कि कम से कम तुम्हारी पीढ़ी में, और अगर तुम्हारी पीढ़ी में नहीं तो तुम्हारी बेटियों की पीढ़ी में, इस देश को वो दिन देखने मिले जब इस देश की स्त्री और इस देश की लड़की किसी लड़के और पुरुष से नहीं डरेगी। भगवान से यही मेरी प्रार्थना है, यही आशीर्वाद है। सवेरे जहाँ से मैंने बंद किया था वहीं से आगे अब कहता हूँ। ये जेपी के आंदोलन के विषय में अब सोचना है। इन सारे आंदोलनों के विषय में एक बात हमको समझ लेनी चाहिए कि ये योजना पूर्वक शुरू नहीं किए गए, किसी प्रसंग में से प्रेरणा मिली, कोई निमित्त बना और उस निमित्त में से आंदोलन आरंभ हुए। सभी आंदोलनों का ये इतिहास है। स्वदेशी आंदोलन, गांधी का आंदोलन, विनोबा का आंदोलन और जेपी का आंदोलन भी। संसार में जो जागतिक युद्ध हुए हैं वो भी ऐसी ही किसी घटना से आरंभ हुए हैं। तो इनमें जितनी योजना होती है उतनी ही नियति भी होती है। योजना और नियति दोनों का एक समागम सा होता है और उसमें से ये आंदोलन शुरू हो जाते हैं। उनमें जो आकांक्षा होती है किसी व्यक्ति के रूप में वो अभिव्यक्त होती है, मुखरित होती है और वो व्यक्ति आंदोलन का नेता बन जाता है। तो नियति को माने या न माने लेकिन इतनी उसमें ऐसा अंश इतना है जिस पर हमारा कोई काबू नहीं होता। ऐसा ही आंदोलन शुरू हुआ, पीछे लोक शक्ति खड़ी करने की भूमिका थी। लोकतंत्र का अधिष्ठान लोक सत्ता होना चाहिए। तंत्र और सत्ता में फर्क है। तंत्र है स्ट्रक्चर और सत्ता है इफेक्टिव एग्जिस्टेंस। जो लोग सॉवरेन हैं यानी जो एक्चुअल सॉवरेन है वो इफेक्टिव सॉवरेन बने। प्रत्यक्ष जिसकी सत्ता है उस वो लोग प्रभावशाली भी बने। इसके लिए ये आंदोलन शुरू नहीं हुआ लेकिन ये इसकी भूमिका बनी। अब ऐसे आंदोलन में एक चीज आ जाती है और वो है प्रतिकार में संघर्ष की भावना। ये संघर्ष शब्द जेपी को बहुत प्रिय नहीं था, आज भी बहुत प्रिय नहीं है। जेल से बाहर आने के बाद कई बार वो कहते थे ये संघर्ष शब्द अब छोड़ देना चाहिए, लेकिन आंदोलन के दौरान और आंदोलन के बाद भी वो इसको छोड़ नहीं सके। इसका कारण संघर्ष में अमर्ष होता है। अमर्ष से मतलब है एक तरह का रोष, एक तरह का जोश, एक तैश। ये तैश सामने कोई प्रतिपक्षी जब तक न हो तब तक नहीं आता और वो प्रतिपक्षी शैतान होना चाहिए जहां तक हो सके। तो दो चीजें वॉल्टेयर ने एक दफा कही कि हमको अगर जीना है तो इफ देयर इज नो गॉड वी विल हैव टू इन्वेंट वन। अगर ईश्वर हो ही नहीं कहीं, तो एक ईश्वर हमको निर्माण एक ईश्वर का करना होगा। और दूसरी चीज, अगर हम जोश से जीना चाहते हैं, कुछ तेजस्विता जीवन में चाहते हैं, तो एक डेविल भी इन्वेंट करना होगा, एक शैतान भी सामने खड़ा करना होगा। कुछ नहीं तो कागज का ही रावण हो तो बाण मारने में मजा आता है। इसलिए हर आंदोलन में एफिजी तैयार की जाती है। एफिजी न हो तो उस जुलूस में भी जोश नहीं आता। कोई शैतान चाहिए, अगर शैतान न हो तो शैतान पैदा करो, तब जोश आता है। इसमें से जोश तो आता है लेकिन आंदोलन नकारात्मक हो जाता है, उसमें विधायक अंश नहीं रहता, कम से कम विधायक अंश पर जोर नहीं रहता। गांधी के आंदोलन में यही हुआ। 1922 के बाद आंदोलन बंद हुआ तो रचनात्मक कार्य आया, परंतु रचनात्मक कार्यों में इन्हें गिने आदमी रहे जिनको कर्मकांडी कहा जाता था, रिचुअल चलाने वाले, चरखा चलाने वाले, संध्या वंदना की तरह, पूजा पाठ की तरह। सारे रचनात्मक कार्य केवल एक कर्म तंत्र की तरह चलाने वाले लोग ही उसमें रह गए। उनमें विचार थे, विजन भी था। विजन से मतलब दिव्य कुछ दर्शन, आगे आने वाले समाज का कुछ दर्शन, इसे विजन कहते हैं। मैजिनी ने इटली में कहा था, वेयर देर इज नो विजन द पीपल पेरिश। जहां आने वाले समाज का स्वप्न न हो, कुछ दर्शन न हो, द पीपल पेरिश, वहां लोगों का नाश होता है। तो ये जो रचनात्मक कार्य करने वाले थे, इनमें से कुछ के सामने विजन था, लेकिन संघर्ष जो करने वाले थे, इनके सामने विजन नहीं था, प्रतिपक्षी ही केवल था। और ये उन्होंने मान लिया कि ये प्रतिपक्षी नहीं रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इस आंदोलन की गति का उन आंदोलनों का यह स्वभाव है कि उनके सामने केवल वो डेविल होता है, विजन कम हो जाता है। ये गांधी के आंदोलन में भी हुआ। स्वराज्य का विजन नहीं रहा, अंग्रेजी राज ही सिर्फ रहा। इसकी कीमत हमको बाद में देनी पड़ी। विनोबा के आंदोलन में यह नहीं रहा, फिर भी काफी हद तक रहा। धन और धरती बट कर रहेगी, गरीब जनता अब न सहेगी, ये नारे जोश दिलाते थे। इसका मतलब यह था कि तुम जो आज सुखी हो, वो सुखी नहीं रह पाओगे। लेकिन इसका मुख्य जोर इस पर नहीं था कि जो दुखी है वो सुखी होगा, वो तुमको सुख से नींद नहीं लेने देगा, तुमको चैन से नहीं जीने देगा। तो ये एक तरह की चेतावनी इन सारे आंदोलनों में रहती है और उस पर जोर रहता है। तो बाढ़ की तरह ही आंदोलन आते हैं। गांधी ने लिखा था कि मेरे आंदोलनों में जो संख्या आई है वो समुद्र का फेन है। और विनोबा ने कहा था कि विनोबा का आंदोलन जब जोर में था तो सिर्फ परिंदे ही नहीं पत्ते भी उड़ने लगे थे। आंदोलन का जोर कम हुआ तो पत्तों के साथ परिंदों का उड़ना भी कुछ कम हो गया। तो जब सारे आंदोलन का हम विचार करते हैं तब उसका जो डायनेमिक्स है उसका विचार करना चाहिए। उसमें गति किस तत्व के कारण गति आई? गति आई संघर्ष के कारण। और संघर्ष नित्य नहीं हो सकता है। कहीं भी किसी भी आंदोलन में संघर्ष नित्य तत्व नहीं हो सकता है। वो गांधी के आंदोलन में नहीं था, विधायक आंदोलन। इसीलिए अब हम कहते हैं आज कि विधायक कार्यक्रम यों था और त्यों था, लेकिन उस वक्त कौन शामिल हुआ विधायक कार्यक्रम में? और जो शामिल हुए वो भी इस आशा से शामिल हुए कि ये दंड बैठक है आगे की कुश्ती के लिए। उसका अनुबंध सारा का सारा प्रतिकार के साथ था। दंड बैठक लगानी है इसलिए कि आगे कुश्ती होने वाली है, तो ये कुश्ती की तैयारी है। ऐसा ही विधायक कार्यक्रम का रूप गांधी के ज़माने में माना गया। खादी को वो विधवा का सहारा और अंधे की लाठी वगैरह ये जैसा कहा गया, ये तो गांधी ने कहा। लेकिन जवाहरलाल जी ने कहा ये आज़ादी की वर्दी है। तो हमको भी जोश कब आता था? तब आता था जब स्टेशन पर उतरते ही दो चार पुलिस वाले तीर्थ के पंडों की तरह हमारा नाम गांव पूछते थे, तब जोश आता था कि हाँ कुछ है खादी में, जोर है। और चरखे का तोप से उपमा दी गई कि यह चरखा हमारी तोप है और अंग्रेजों की तोप से उनका गोला तो कुछ मील ही जाता है, चरखे का गोला 6000 मील लैंड के शायर तक जाता है। यानी ये सब युद्ध की और संघर्ष की भाषा अगर न हो तो जोश नहीं आता। ये हमारे कुर्ते के बटन टूटते नहीं हैं। तो उसके लिए संघर्ष शब्द को अपनाना पड़ा। और इसमें जो असली उसका मकसद था वो थोड़ा पीछे रह जाता है। यह हर आंदोलन में हुआ है, जेपी के आंदोलन में भी हुआ, इसलिए मैं उनको दोष नहीं देता। लेकिन उस आंदोलन की भूमिका यह थी कि राज्य शक्ति का नियमन करने वाली और राज्य शक्ति को आप समर्थन करने वाली एक लोकसम्मति देश में खड़ी हो, ये उस आंदोलन का असली मंशा था। ये मंशा पीछे क्यों रह गया मैंने आपको समझाया कि ये पीछे इसलिए रह गया कि प्रतिकार जब तक संघर्ष में परिणत नहीं होता तब तक उस प्रतिकार में आवेश नहीं आता। विनोबा इस आवेश को नहीं चाहते थे, इसलिए उनके आंदोलन में यह संघर्ष का तत्व नहीं आया। ये कमी रह गई हमने माना, तो जेपी के आंदोलन में यह तत्व आया। अब संघर्ष में एक तत्व और आ जाता है, उस तत्व का नाम है बदला, रिवेंज का तत्व। इलाहाबाद के स्टेशन पर एक दफा मैं उतरा, 12 बजे रात के होंगे, अंधेरी रात थी, मुझे 5 मील दारागंज जाना था। एक रिक्शे में बैठा, आप जानते हैं जब आदमी के मन में कुछ आशंका होती है तो या तो गीत गाने लगता है या बात करने लगता है। तो वो रिक्शे वाला कौन है क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उससे बात करने लगा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कब आए इलाहाबाद में। वो सिर्फ एक एक मोनोसिलेबल, एक एक शब्द में ही उत्तर देता था। तो मैं और भी घबराया कि एक एक शब्द में ही क्यों बोलता है। तो मैं उससे कहा कि मैं इतना तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, तुम कोई जवाब दे नहीं रहे हो, क्या सोच रहे हो। कहा कि बाबूजी जो सोच रहा हूँ वो कहूँगा तो आप नाराज़ होंगे। मैं कहा नाराज तो नहीं होऊंगा, तुम बताओ क्या सोच रहे हो। कैसा सोच रहा हूँ कि वो दिन कब आएगा कि जब मैं भी रिक्शे में बैठा होऊंगा और आप रिक्शे चलाते होंगे, ये मैं सोच रहा हूँ। अब ये जो प्रतिक्रिया की क्रांति कहते हैं इसमें, इसे कि इंदिरा कब खींच नीचे आ जाएगी, ये कांग्रेस सत्ता में कब नहीं होगी, जिस दिन नहीं होगी उस दिन हम रास्ते पर नाचेंगे, इतना ही मन में रह जाता है। और लोग आंख से ओझल हो जाते हैं। जो क्रांति का नायक है वो फिर हमारे सामने नहीं रहता है। हर आंदोलन का ऐसा हुआ है, इस आंदोलन का भी ये हुआ। इसका दोष जयप्रकाश को मैं नहीं देना चाहता, किसी दूसरे को भी नहीं देना चाहता। ये जो नेगेटिव नकारात्मक आंदोलन होते हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। गांधी के आंदोलन के बाद स्वराज आया, लेकिन अंग्रेजी राज से बदतर स्वराज आया। मैंने जब मैं स्वराज के आंदोलन में आया 20-21 साल की उम्र में, उस वक्त अपने मित्रों से कहा था कि जो स्वराज आने वाला है ये अंग्रेजी राज से बदतर होगा, बेहतर नहीं होगा। ये मैं जानता हूँ, फिर भी अंग्रेजी राज नहीं चाहता। मैं अंग्रेजी राज के खिलाफ इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि अंग्रेजी राज से स्वराज अच्छा होगा, मैं जानता हूँ कि अंग्रेजी राज से स्वराज बुरा होगा। फिर भी मुझे स्वराज चाहिए। इसी तरह की भावना जेपी के आंदोलन के वक्त लोगों में थी, कम से कम इमरजेंसी के बाद तो मेरे मन में थी कि कुछ भी हो, जिन लोगों के राज्य में ये इमरजेंसी आई है उनका राज तो नहीं चाहिए। मैंने विनोबा को लिखा था, ये पंच महापातकों से भी बड़ा पाप इंदिरा जी ने किया है। आज भी मेरी वही मनोवृत्ति है। इसलिए मैंने कहा था कि ये जनता सरकार अगर असफल होती है तो देश के सामने अंधेरा है। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि इंदिरा जी जब तक ये नहीं कहती हैं कि इमरजेंसी पाप था, तब तक दोबारा वो आ सके। ये मनोवृत्ति प्रधान मनोवृत्ति थी। उसका गुण मैंने बतला दिया कि वो आंदोलन राज्य शक्ति की नियामक और राज्य शक्ति की समर्थक लोक सम्मति उपस्थित करना चाहता था, ये उसकी भूमिका थी। और उसने जितनी लोक जागृति की ये उसकी मैं संपूर्ण सिद्धि मानता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का वह आंदोलन था इससे आगे उसमें कुछ हो नहीं सकता था। उसकी सफलता यही है कि कांग्रेस पराजित हुई, इससे अधिक उसकी कोई फलश्रुति मैं नहीं मानता हूँ। यह आप अवश्य मान सकते हैं कि कांग्रेस के की पराजय में नागरिक का सत्व प्रकट हुआ जो उससे पहले नहीं हुआ था, ये तो उसकी सफलता है। लेकिन उसका मुख्य दोष यह है कि वो संघर्ष का आंदोलन रहा था, इसलिए नकारात्मक आंदोलन था। नारा संपूर्ण क्रांति का भले ही रहा हो, उद्देश्य संपूर्ण क्रांति का था, लेकिन संघर्ष केवल नकारात्मक था। यह हमको समझ लेना चाहिए, जिससे बार बार हमारे चित्त में बेचैनी पैदा ना हो कि जो भूमिका थी इस आंदोलन की उतना हुआ। दूसरी चीज, इस आंदोलन में सभी तरह के तत्व शामिल हुए जिनके भिन्न भिन्न उद्देश्य हो सकते थे, लेकिन जो शामिल होना चाहे उसको आप मना कैसे कर सकते थे? अगर लोक आंदोलन आप चलाना चाहते हैं तो गांधी क्या ये कहता कि चित्तरंजन दास को मैं नहीं आने दूंगा? क्या ये वो ये कहता कि तेज बहादुर सप्रू आना चाहे तो मैं उन्हें नहीं आने दूंगा? ये तो कह नहीं सकता था ना। तो भिन्न भिन्न उद्देश्यों से प्रेरित, भिन्न भिन्न आदर्शों से प्रेरित और भिन्न भिन्न विचारों से प्रेरित कई तरह के तत्व इस आंदोलन में आए। अब अधिक से अधिक जेपी क्या कर सकते थे? जो उन्होंने किया कि तुम अपनी पार्टी का लेबल छोड़ दो, तुम अपनी पार्टी के सदस्य के नाते इसमें नहीं आ सकोगे, लेबल छोड़ दो, झंडा छोड़ दो और सदस्यता भी छोड़ दो। उसको भी छोड़ने के लिए तैयार हो गए लोग, हम सदस्यता भी छोड़ देंगे और एब्सोल्यूट सरेंडर, हमारा तो जो आप कहेंगे उसके लिए संपूर्ण समर्पण है। अब इसके बाद क्या कहा जा सकता है? जितनी सावधानी वो रख सकते थे उतनी सावधानी रखी, लेकिन जेपी की एक मर्यादा है कि ये साधु स्वभाव का आदमी है, इसमें चातुर्य नहीं है। बहुत विश्वास परायण है और ये वीरता का लक्षण है। सावधानता तब होती है जब मनुष्य में कुछ कमजोरी होती है या आशंका होती है। जो वीर होता है वो सावधानता कम रखता है, इसलिए जेपी में ये एक दोष है कि वो चाहे जिसका भरोसा कर लेते हैं और वो भरोसा अगर इस भरोसा उस आदमी का कर सकते हैं अधिक जो थोड़ा त्याग करने के लिए तैयार। तो कभी कभी ऑनेस्टी की तरह त्याग भी बेस्ट पॉलिसी होती है। व्यापारी ईमानदार इसलिए रहता है कि ज्यादा मुनाफा हो। आत्मा नहीं हूं, बैरिस्टर भी हूं, तो मुझे केवल महात्मा मत समझो, मैं बैरिस्टरी भी जानता हूं, लेकिन जेपी में तो कुछ है नहीं। वो हैं तो साधु चरित पुरुष हैं या वीर चरित पुरुष हैं। चालाकी भी करनी हो तो वो कर नहीं सकते हैं, फंस जाते हैं उसे। मेरे यहाँ मेरे छुटपन में एक नौकर था, दूसरे नौकर बाजार से सौदा लाते थे तो कुछ पैसे खा लेते थे उसमें से। अब ये बेवकूफ था, वैसे इतना नहीं तब इतना शऊर नहीं था कि कहाँ पैसे खाने चाहिए, कार्ड लाया उसी में ही पैसे खा लिया। अब वो तो हो नहीं सकता था, तो बात खुल गई। मैं कहा तुझे पैसा खाना नहीं आता, कहे मैं कम नहीं करता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि पैसा खाना नहीं आता। तो जेपी कोई चालाकी करने जाएंगे तो कह देंगे कि ये मैं चालाकी कर रहा हूं। सौ आदमियों से वही बात करेंगे और हर एक से कहेंगे कि किसी से मत कहना, ये गुप्त बात है। और फिर जाकर ब्रह्म विद्या मंदिर की लड़कियों के सामने भाषण में भी कह देंगे। तो इस तरह का आदमी, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ मर्यादाएं हैं। जो मैंने कहा था कि विनोबा के व्यक्तित्व की कुछ मर्यादाएं हैं, तो जीपी के व्यक्तित्व की भी मर्यादाएं हैं। और उनमें एक मर्यादा यह है कि उनमें विजडम कम है। वीरता जितनी है उतनी विजडम नहीं। इस कारण जो तत्व उनके आंदोलन में शामिल हुए, उनमें से कई तत्वों ने अपना अपना उल्लू सीधा करना शुरू कर दिया। अब इन तत्वों में वो तत्व भी आए जो सत्ताकांक्षी थे। सवेरे मैंने आपसे कहा कि पार्टी क्या है, ओपिनियन ऑर्गेनाइज्ड फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पावर।